अगर एक ऐसी कम्युनिटी के सामने कोई नया रास्ता पेश करना हो जो सदियों से खून की शुद्धता और परंपराओं को मानती आई है,
तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना?
एग्जैक्टली, बिल्कुल। आमतौर पर तो किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाएगा जो उस समाज का सबसे पवित्र, सबसे आदर्श किरदार हो।
पर पहली सदी में एक लेखक ने बिल्कुल इसका उल्टा किया था।
सही कहा। उसने अपनी किताब की शुरुआत एक ऐसे फैमिली ट्री या वंशावली से की जिसमें ऐसे लोग भरे पड़े थे जिनकी कहानियां स्कैंडल, नियम तोड़ने और यहां तक कि दुश्मन देशों से जुड़ी हुई थी,
जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही शॉकिंग रहा होगा।
बहुत शॉकिंग। और आज की इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के पहले अध्याय और उसकी प्रस्तावना पर दिए गए विश्लेषण को खोलेंगे। ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि
ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सामाजिक दीवारों को तोड़ने का एक बहुत ही रेडिकल मॉडल छिपा है। और ये चर्चा इसलिए भी इतनी दिलचस्प है क्योंकि प्राचीन लेखक अपनी बात को एवं किसी रैंडम क्रम में नहीं लिखते थे।
हाँ, हर शब्द और नाम के पीछे एक पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ होता था।
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर के नोट्स हमें उस पहली सदी के नज़रिए से इस प्राचीन टेक्स्ट को देखने का मौका देते हैं। तब जाकर समझ आता है कि ये किताब अपने वक्त के लोगों के लिए कितनी हैरान करने वाली या कहें तो स्कैंडलस रही होगी।
तो चलिए इस गुंजी हुई बात की परतें खोलते हैं। किसी भी महान और जटिल कहानी को पूरी तरह समझने के लिए कभी कभी उसके अंत को पहले देखना सबसे बेहतर होता है।
है ना, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं।
वही वही, मैथ्यू की किताब के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। किताब की शुरुआत भले ही एक लंबी और पहली नजर में थकाऊ लगने वाली वंशावली से होती है, पर इस कहानी का असली नतीजा इसका लक्ष्य आखिरी अध्याय में जाकर खुलता है।
सही बात है।
तो आखिरी अध्याय में ऐसा क्या है जो इतना जरूरी है?
देखिए, इस किताब का क्लाइमैक्स मैथ्यू 28 में मिलता है, जिसे आमतौर पर द ग्रेट कमीशन या महान आदेश कहा जाता है।
अच्छा।
प्राचीन साहित्य में ये एक आम शैली थी कि लेखक अपने मुख्य विषयों या थीम्स का सार किताब के आखिरी हिस्से में ही देते थे। तो यहाँ एक आदेश दिया गया है, शिष्य बनाना, यानी मेकिंग डिसाइपल्स।
ओके, शिष्य बनाना।
हाँ, और इस आदेश को अमल में लाने के तीन हिस्से बताए गए हैं। पहला जाना, दूसरा बैप्टिज्मा देना और तीसरा सिखाना। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात जाने की दिशा है।
दिशा से आपका मतलब है कि कहाँ जाना है?
बिल्कुल। लक्ष्य ये रखा गया कि ऑल नेशंस यानी दुनिया भर के सभी राष्ट्र और अन्य जातियों तक जाना है, सिर्फ अपनों तक सीमित नहीं रहना है।
ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर नतीजा दुनिया भर के नेशंस या सभी राष्ट्रों तक जाना है, तो क्या लेखक ने शुरुआत से ही इसका कोई संकेत अपनी किताब में दे दिया था?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है,
क्योंकि ये तो ऐसा ही है जैसे किसी मिस्ट्री मूवी के आखिरी सीन का क्लू डायरेक्टर ने पहले ही फ्रेम में छिपा रखा हो।
एकदम वैसा ही। और अगर ऐसा है तो उस क्लू को समझने के लिए हमें इस टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये क्लू का असर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम उस वक्त के माहौल को न समझें।
तो उस वक्त का माहौल कैसा था?
ये किताब लगभग 70 AD के बाद लिखी गई थी। ये वो दौर था जब जेरूसलम का मंदिर तबाह हो चुका था और यहूदी समाज अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा था।
मतलब सर्वाइवल मोड में थे सब।
बिल्कुल। ऐसे में इस किताब का मुख्य टारगेट ऑडियंस मिसायनिक ज्यूइश बिलीवर्स थे, यानी वो यहूदी जो जीसस को मसाया मानते थे। इन लोगों के लिए खासकर उस माहौल में अपनी राष्ट्रीय और धार्मिक शुद्धता बचाकर रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी।
ओह, उन्हें लगता होगा कि मसीहा सिर्फ और सिर्फ उनके दुख दूर करने और उनके राष्ट्र को बहाल करने के लिए आया है ना?
सही कहा। लेकिन मैथ्यू अपनी किताब के पहले ही अध्याय में उनके इन्हीं विश्वासों को चुनौती दे देता है।
और कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। वो चुनौती आती है उस जगह से जहाँ से उम्मीद सबसे कम होती है, मतलब एक वंशावली से।
हाँ, जीनियोलॉजी से।
नेशंस या किसी और जाति तक जाने के उस आखिरी आदेश को मैथ्यू ने सीधे तौर पर जीसस की वंशावली से जोड़ दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक वंशावली किसी राष्ट्रवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकती है?
मैं बताती हूँ। प्राचीन यहूदी वंशावलियाँ आम तौर पर सिर्फ एक ही काम के लिए होती थीं, इज़राइलाइट खून की शुद्धता और किसी के शाही हक को प्रमाणित करना।
राइट, बस प्यूरिटी दिखाने के लिए।
हाँ, और उनमें साधारणतया सिर्फ पुरुषों के नाम दर्ज होते थे। लेकिन मैथ्यू इस कड़ी परंपरा को तोड़कर चार ऐसी महिलाओं का नाम इस फैमिली ट्री में शामिल करता है जिनका सीधा कनेक्शन जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों से था।
ओह वाओ, चार महिलाएं।
हाँ, और ये चार नाम थे तमार, राहब, रूथ और बैथशेबा।
ये तो वैसे ही हुआ जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपना कॉर्पोरेट रिज्यूमे बनाना हो जिसमें उसे अपनी एक बेहतरीन इमेज पेश करनी हो,
है ना, और वो वहाँ कुछ और ही लिख दे।
वही तो, वो अपनी सफलताओं की जगह अपने परिवार के सबसे विवादास्पद, नियम तोड़ने वाले और स्कैंडल से जुड़े किस्सों को सबसे ऊपर हाईलाइट कर दे। उनमें से यानी जूस को ये पढ़कर कैसा लगा होगा?
वो जरूर आश्चर्य में पड़ गए होंगे, क्योंकि इन चारों महिलाओं का इतिहास आम यहूदी परंपरा के हिसाब से शुद्ध या आदर्श नहीं था।
जैसे अगर हम तिमार की बात करें,
तिमार को ही लें। वो एक केनानाइट महिला थी जिसकी कहानी जेनेसिस में आती है और वो सामाजिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ थी। फिर राहब का जिक्र आता है। राहब जेरिको की रहने वाली थी जो एक दुश्मन शहर था।
वेट, जेरिको तो दुश्मन थे ना इसराइल के?
बिल्कुल थे। यहाँ पर उस वक्त के विद्वान अक्सर राहब की तुलना अखान नाम के किरदार से करते हैं, जिससे ये किस्सा और भी गहरा हो जाता है।
अखान, इस तुलना में क्या विशेष बात है? अखान कौन था?
देखिए, अखान एक यहूदी था। वो अंदर का आदमी था, उसके पास खून की शुद्धता थी, पर जब जेरिको पर हमला हुआ तो उसने चोरी की और अपनों को ही धोखा दिया।
ओह, इनसाइडर होकर धोखा दिया?
हाँ, जिसके नतीजतन उसके पूरे परिवार का नाश हो गया। लेकिन दूसरी तरफ रेहाब एक जेंटाइल थी। वो बाहर की थी, इसराइल की दुश्मन थी, पर उसने यहूदी गुप्तचरों को छुपाया, विश्वास दिखाया
और उसकी वजह से उसके पूरे परिवार की जान बच गई।
एग्जैक्टली।
ओह, तो ये सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि खून की शुद्धता या इनसाइडर होने से ज्यादा आपके कर्म और विश्वास मायने रखते हैं।
सही पकड़ा आपने।
और मुझे लगता है कि रूथ का किस्सा भी इस बात को और पुख्ता करता है।
है ना? बिल्कुल। रूथ एक मोआबाइट महिला थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेज था। ड्यूटरोनमी किताब के नियम के अनुसार एक मोआबाइट को 10वीं पीढ़ी तक भी प्रभु की सभा में शामिल होने की इजाजत नहीं थी।
बाप रे, 10वीं पीढ़ी तक? ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून था।
हाँ, ये कानून पत्थर की लकीर माना जाता था। लेकिन इस सख्त नियम के बावजूद उसके आम विश्वास और निष्ठा के कारण उसे अपनाया गया और बाद में वो राजा डेविड की परदादी बनी।
कमाल है। और चौथी महिला जो थी, बैथशीबा?
अगर हम चौथे नाम बैथशीबा की बात करें तो मैथ्यू ने वहां भी एक गहरा इशारा दिया है। वो बैथशीबा का नाम सीधा तौर पर नहीं लिखता।
तो क्या लिखता है?
वो उसे उरिया द हिटाइट की पत्नी के रूप में लिखता है, जो कि उसके जेंटाइल यानी किसी अन्य जाति कनेक्शन को और भी मजबूत करके पेश करता है।
ठीक है, तो अगर खून की शुद्धता नहीं बल्कि कृपा और कर्म मायने रखते हैं तो यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि मैथ्यू ने सिर्फ औरतों को ही नहीं जोड़ा, है ना?
वही, सोर्स नोट्स में लिखा है कि ग्रीक ट्रांसलेशन में कुछ राजाओं के नामों की स्पेलिंग के साथ एक जबरदस्त खेल भी खेला गया है। ये क्या किस्सा है?
असल में इन शब्दों के खेल को मिड्राश कहते हैं। प्राचीन यहूदी विद्वान जब किसी टेक्स्ट की व्याख्या करते थे तो वो शब्दों या स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव करके नए गहरे अर्थ निकालते थे।
अच्छा, मतलब कोड की तरह?
बिल्कुल, ये उनका एक तरीका था ये दिखाने का कि इतिहास के छुपे हुए राज क्या हैं। मैथ्यू की ग्रीक टेक्स्ट में एक राजा थे एमन, जो कि इतिहास के अनुसार एक बहुत ही बुरे राजा थे।
ओके।
मैथ्यू ने उनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी बदलकर उसे एमस लिख दिया, जो कि एक महान भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट थे। उसी तरह एक और राजा आसा के नाम में एक अक्षर जोड़कर उसे एसाफ लिखा गया, जो कि साम्स लिखने वाले एक महान सामिस्ट यानी मंदिर के याजक प्रीस्ट थे।
तो इसका असल मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ गलतियां थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी?
नहीं नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। उस वक्त के यहूदी एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो राजा दाविद के वंश से हो, यानी सिर्फ एक किंग हो।
राइट।
लेकिन मैथ्यू इस मिड्राश या वर्ड प्ले के जरिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रहा था। वो मैथमेटिकली और जीनियोलॉजिकली एक ऐसा रेज्यूमे बना रहा था जो कहता है कि जीसस सिर्फ एक किंग नहीं है,
बल्कि वो प्रॉफिट यानी आमस की तरह और प्रीस्ट यानी आसाफ की तरह की धरोहर भी अपने अंदर समेटे हुए हैं।
एग्जैक्टली, वो प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग तीनों हैं।
क्या शानदार तरीका है अपनी बात को कोड में लिखने का। और वो जो 14 यानी 14 पीढ़ियों का पैटर्न बार बार इस वंशावली में आता है, वो भी शायद कोई इत्तफाक नहीं है ना?
एकदम सही पकड़ा। मैथ्यू ने इस लिस्ट को 14 पीढ़ियों के 3 सेट में बांटा है। इब्राहिम से दाविद तक 14, दाविद से निर्वासन यानी एग्जाइल तक 14 और निर्वासन से मसीहा तक 14।
तो ये नंबर 14 इतना खास क्यों था?
क्योंकि इसराइल के इतिहास में 14 पीढ़ियों का इंटरवल एक ऐसी संख्या थी जो इस बात का इशारा करती थी कि जब भी इतना लंबा वक्त बीता है, कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक और युग बदलने वाला काम हुआ है।
ओ, मतलब ये पैटर्न पढ़ने वालों को ये बता रहा था कि इसराइल एक बार फिर अपने सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार था।
बिल्कुल।
तो अब हमें ये समझ आ गया कि यह बड़ा बदलाव क्या था और कैसे पहली सदी में जेंटाइल्स तक जाना या उन्हें अपने बराबर समझना एक कितना बड़ा कदम था।
सही बात है।
लेकिन इस नए रेडिकल रास्ते पर चलने के लिए उन नए शिष्यों को यानी डिसाइपल्स को क्या कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इस संदेश को फैलाने का आदेश उन्हीं आम लोगों को दिया गया था।
देखिए, अगर हम इस नए मिशन को बड़े संदर्भ में देखें तो मैथ्यू की किताब में शिष्य बनने का मतलब अपनी किसी व्यक्तिगत सफलता के लिए लोग इकट्ठा करना नहीं था।
तो फिर क्या था?
मतलब मसाया के लिए शिष्य तैयार करना था और इसकी कीमत हकीकत में बहुत भारी थी। शिष्य बनने का पहला असर उनकी फाइनेंशियल और जॉब सिक्योरिटी पर पड़ा।
जैसे मछुआरों का किस्सा है।
हाँ, उदाहरण के लिए मछुआरों को अपना अच्छा खासा कमाई वाला काम छोड़ना पड़ा। हम आज शायद सोचें कि मछुआरे गरीब होते थे, पर उस दौर में वो किसानों से ज्यादा कमाते थे। उनका अपना एक बिजनेस नेटवर्क था
और इसके साथ उन्हें अपनी रेजिडेंशियल सिक्योरिटी यानी घर बार भी छोड़ना पड़ा। सोर्स नोट्स में जीसस का एक मशहूर कथन है कि लोमड़ियों के पास बिल हैं और पक्षियों के पास घोंसले, पर उनके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है।
है ना, वो खुद एक शरणार्थी यानी रेफ्यूजी थे। उनका अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था।
पर देखिए, इसमें सबसे भारी कीमत थी सोशल ऑब्लिगेशंस यानी सामाजिक कर्तव्यों की। जब जीसस ने एक व्यक्ति को यह कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, लेट द डेड बरी देयर डेड,
के लिए ये सुनना बहुत ही विचलित करने वाला था।
एक सेकंड रुकिए, इस पॉइंट को थोड़ा डीपली समझते हैं। आज के नजरिए से भी देखें तो ये बहुत एक्सट्रीम लगता है। एक बेटे का सबसे बड़ा सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य अपने पिता को दफनाना और उनका अंतिम संस्कार करना माना जाता था।
सही बात है।
ये वैसा ही है जैसे आज के दौर में अगर किसी व्यक्ति को अपना नया स्टार्टअप शुरू करना हो और उससे कहा जाए कि उस काम के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में मत जाओ, ये तो पूरा सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बॉयकॉट ला देगा। इतनी एब्सोल्यूट और सख्त डिमांड क्यों?
ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। पहली नजर में ये डिमांड कठोर और लगभग असंभव लगती है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीसस यहाँ एक ऐसा अधिकार, एक ऐसी अथॉरिटी मांग रहे थे जो उस यहूदी परंपरा में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास था।
अच्छा, मतलब एक डिवाइन अथॉरिटी का क्लेम था ये?
हाँ, वो क्लेम कर रहे थे कि उनके मिशन का महत्व सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि सबसे बड़े सामाजिक फर्ज से भी ऊपर। पर इस चर्चा का एक और पहलू है। इस रेडिकल और सख्त डिमांड के ठीक पैरेलल एक और चीज चल रही थी।
वो क्या?
और वो थी ग्रेस यानी कृपा।
ग्रेस का इस सख्ती के बीच में क्या काम? क्योंकि डिमांड तो ऐसी लग रही है कि जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
ग्रेस का काम ये था कि ये सख्त लगने वाले नियम इंसानी कमजोरियों के आगे बिल्कुल रुके या कठोर नहीं थे। ये डिसाइपल्स कोई परफेक्ट सुपर ह्यूमंस थोड़ी थे।
सही कहा, इंसानी थे।
उदाहरण के तौर पर पीटर और जूडस दोनों ने जीसस को धोखा दिया या उनसे इनकार किया, लेकिन पीटर जिसने अपनी गलती मानी, पश्चाताप किया और रोया, उसे पूरी तरह से माफ कर दिया गया
और आगे चलकर वही इस मिशन का बड़ा लीडर बना।
एग्जैक्टली। जबकि जूडास ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
क्रूसिफिकेशन के वक्त ज्यादातर शिष्य डर के मारे भाग गए थे। वो डरते थे, उनसे गलतियां होती थी, पर उन्हीं इम्परफेक्ट लोगों को ग्रेस मिली और उन्होंने ही दुनिया भर में संदेश को फैलाया।
कमाल की बात है। एक तरफ इन शिष्यों का इतना बड़ा दुनिया को बदलने वाला रेडिकल मिशन और इतने कठोर आदेश चल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैथ्यू किताब की शुरुआत में ही एक बहुत शांत व्यक्तिगत किस्से को उभर कर सामने लाता है।
हाँ, जोसेफ का किरदार।
वही जोसेफ का किरदार। मुझे लगता है ये एक क्वाइट हीरोइज्म है जो अक्सर इतने बड़े हिस्टोरिकल नैरेटिव में कहीं छिप जाता है।
मैथ्यू स्पेसिफिकली जोसेफ को एक राइचियस यानी धार्मिक और न्यायी व्यक्ति के रूप में पेश करता है, पर इस राइचियसनेस को समझने के लिए हमें उस वक्त के कानून, खासकर सगाई और शादी के कानून को देखना होगा।
तो उस वक्त का कानून कैसा था? उस दौर में बिट्रोथल या सगाई सिर्फ एक औपचारिक रस्म नहीं थी, उस शादी जितनी ही लीगली बाइंडिंग होती थी और लगभग एक साल चलती थी। अगर इस दौरान किसी औरत पर व्यभिचार या अडल्ट्री का आरोप लगता
तो उसको सजा मिलती होगी जरूर।
हाँ, तो भले उसे मौत की सजा ना मिले पर उसको पब्लिक शेमिंग और तलाक देना जरूरी माना जाता था।
और रोमन लॉ का भी तो कोई दबाव था इसमें।
बिल्कुल, रोमन नियम के अनुसार अगर एक पति जानता है कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया है और वो फिर भी उसे तलाक नहीं देता या सजा नहीं दिलवाता तो कानूनन उस पति को पिंप या धंधा करवाने वाला माना जाता था।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी सामाजिक और कानूनी शर्मिंदगी थी,
है ना?
आज के कैंसिल कल्चर के दौर को देखें, जहां पब्लिक शेमिंग को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, किसी की गलती को पब्लिक करना सबसे आसान काम है। उस वक्त के कानून के हिसाब से जोसेफ चाहता तो पब्लिक में तलाक देकर अपना दिया हुआ दहेज वापस ले सकता था।
हाँ, वो सोसाइटी के सामने खुद को एक विक्टिम बनाकर मैरी को पूरी तरह अपमानित कर सकता था।
पर उसने बदला लेने की जगह चुपचाप तलाक देने का फैसला किया ताकि मैरी पब्लिक शेमिंग से बच सके। लेकिन मेरा सवाल यह है, किसी को सामाजिक शर्मिंदगी से बचाना करुणा या ह्यूमन डिसेंसी जरूर है, पर क्या यही असल राइचियसनेस या दिव्यता है?
राइचियसनेस का यहाँ मतलब सिर्फ किसी लिखे हुए नियम का अंधा पालन करना नहीं था, बल्कि उसमें उस कंपैशन को जोड़ना था जो सोसाइटी नहीं दे रही थी। पर आपने ठीक कहा, दिव्यता का हिस्सा इसके बाद आता है। कहानी चुपचाप तलाक पर खत्म नहीं हुई।
तो आगे क्या हुआ?
कॉन्सेक्रेशन यानी समर्पण की जो मिसाल यहाँ आती है वो और भी हैरत अंगेज है। जब जोसेफ को सपना आया और बताया गया कि ये बच्चा दिव्य है, तो उसने चुपचाप तलाक देने का फैसला बदल दिया और मैरी से शादी की।
और शादी करने का सीधा सा मतलब था कि उसने सोसाइटी की उस सारी शर्मिंदगी, उन सारे तानों को अपने सर पर ले लिया।
बिल्कुल, लोग यही सोचते कि शादी से पहले जोसेफ ने ही मैरी को प्रेग्नेंट किया होगा या वो एक कैरेक्टरलेस औरत को शेल्टर दे रहा है।
उसने उस दाग को पूरी जिंदगी सहन किया और इसके अलावा उसने एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल दिखाया जो उस दौर में अनोखा था।
हाँ, एक वर्जिन बर्थ को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बच्चे के पैदा होने तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए।
एक छोटे से जगह में रहने वाले नए शादीशुदा जोड़े के लिए इस तरह का सख्त सेल्फ कंट्रोल और सामाजिक अपमान से ना असल में एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था।
एकदम।
तो अगर इन सबको जोड़ा जाए, जोसेफ का ये व्यक्तिगत शांत फैसला सदियों पहले की गई दुनिया की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक का हिस्सा बन गया और यही हमें उस बड़े संदर्भ, उस बिगर पिक्चर की तरफ ले जाता है।
आइज़ाया अध्याय 7 वर्स 14 की भविष्यवाणी।
हाँ, पर मैंने पढ़ा है कि इसको लेकर विद्वानों और आलोचकों के बीच काफी बहस होती है।
ओ, ये बहुत बड़ी डिबेट है। अक्सर आलोचक कहते हैं कि मैथ्यू ने आइज़ाया 7:14 को संदर्भ से बाहर निकालकर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया।
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो कैसे?
क्योंकि जब आइज़ाया ने वो भविष्यवाणी की थी तो वो असल में उस वक्त के राजा आहाज के लिए एक कंटेम्प्रेरी सिग्नल था, एक लोकल साइन था।
ठीक है।
जब अराम और इसराइल आहाज पर हमला करने वाले थे तो आइज़ाया ने एक बच्चे के पैदा होने की बात कही जो शायद आइज़ाया का खुद का बेटा था और कहा कि उस बच्चे के बड़े होने से पहले ही वो दोनों दुश्मन राजा खत्म हो जाएंगे।
ओ, तो ये तो एक प्योरली पॉलिटिकल और लोकल संकेत लगता है।
हाँ, वही।
तो फिर मैथ्यू ने इस पुरानी लोकल पॉलिटिकल प्रोफेसी को एक मसाया की यूनिवर्सल प्रोफेसी से कैसे जोड़ दिया? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी सीड यानी बीज को देखकर कोई कहे कि ये बस एक छोटा सा पौधा बनेगा, लेकिन सदियों बाद कोई आकर देखे कि वो तो एक विशाल पेड़ बन चुका है। क्या आहास के वक्त वो सिर्फ एक छोटा पौधा था, पर मैथ्यू ने उस पूरे पेड़ को देख लिया था?
ये बिल्कुल ठीक एनालॉजी है। मैथ्यू ने आइज़ाया को सिर्फ उस एक टुकड़े या उस सीड में नहीं देखा, बल्कि उसने उस पूरे संदर्भ को, उस विशाल पेड़ को पढ़ा था।
कैसे? उसमें ऐसा क्या था?
अगर हम आइज़ाया के उसी हिस्से में आगे अध्याय 9 की तरफ बढ़ें, तो वहां उसी बच्चे को, उसी इमैनुअल को माइटी गॉड यानी शक्तिमान परमेश्वर कहा गया है। एक आम बच्चा, चाहे वो आइज़ाया का बेटा ही क्यों ना हो, माइटी गॉड में ही हो सकता।
सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता।
मैथ्यू समझ गया था कि आहाज के लिए जो संकेत था वो हिस्ट्री का सिर्फ एक शैडो, एक झलक थी। इसका असली और मुकम्मल रूप इतिहास में सदियों बाद आने वाला था, जब परमेश्वर खुद मानव इतिहास में उस इमैनुअल के रूप में उतरेंगे। और इमैनुअल का मतलब ही है गॉड विद अस, ईश्वर हमारे साथ है।
ये पॉइंट बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है अगर हम ध्यान से सोचें। किताब की शुरुआत होती है इस वादे के साथ कि इमैनुअल, गॉड विद अस, और जैसा कि हमने चर्चा के शुरू में बात की थी,
अंत में भी वही थीम आती है।
हाँ, किताब का अंत यानी मैथ्यू 28, जहां वो महान आदेश दिया गया है, वो खत्म होता है जीसस के इस वादे के साथ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुरुआत और अंत दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं।
और ये कनेक्शन सिर्फ साहित्यिक नहीं है, थियोलॉजिकली बहुत भारी है। यहूदी सोच में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही सर्वव्यापी यानी ओमनीप्रेजेंट हो सकता है। उनके पास ईश्वर के इस रूप के लिए एक शब्द था, मकोम।
मकोम,
हाँ, मकोम यानी द प्लेस, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो हर जगह हर वक्त मौजूद है। जब जीसस किताब के आखिरी अध्याय में डिसाइपल्स को दुनिया भर में भेजते वक्त कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सीधे तौर पर उसी मकोम, उसी ओमनी प्रेजेंस और अपनी दिव्यता का दावा कर रहे थे।
वाओ।
मैथ्यू ने इमैनुअल से शुरू करके मकोम पर खत्म करते हुए पूरी किताब को एक ही बेहतरीन लक्ष्य के साथ बुनी है।
एक ऐसी दुनिया में जहां आज हम बेशुमार जानकारियों के बीच घिरे हैं पर फिर भी एक दूसरे से आइसोलेटेड या अलग थलग महसूस करते हैं, मैथ्यू का ये पहला अध्याय असल में एक आईना दिखाता है। ये सिखाता है कि कैसे एक प्राचीन टेक्स्ट ने उस वक्त की सबसे कठोर राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक दीवारों को तोड़कर रख दिया था।
और ये दीवारें तोड़ने का काम किसी शोर शराबे से नहीं हुआ। जोसेफ की शांत करुणा और उस वंशावली के दागी और रूल ब्रेकिंग किरदार हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि असली बदलाव किसी परफेक्ट फ्लॉलेस वैक्यूम में नहीं होता।
सही बात है।
वो सोसाइटी की इन्हीं कमियों, इम्परफेक्शंस और उलझनों के बीच से शुरू होता है। ये टेक्स्ट सिर्फ कानून या नियम नहीं सिखाता, ये उस रेडिकल ग्रेस की बात करता है जहां सामाजिक तौर पर बहिष्कृत आउटकास्ट्स लोग भी एक बहुत बड़ी डिवाइन योजना का अहम हिस्सा बन जाते हैं।
सच में इस विश्लेषण ने उस किताब को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल से एक आखिरी विचार जो सोचे बिना रहा नहीं जाता। नोट्स में जिक्र है,
क्योंकि
जीसस नाम का अर्थ है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा।
हाँ, और अगर हम इसे उस लंबी वंशावली से जोड़कर देखें जिसमें ऐसे लोगों की भरमार थी जिन्होंने पाप किए, धोखा दिया या उस वक्त के सामाजिक नियम तोड़े,
तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी बचाने की यानी सेविंग की प्रक्रिया उनके पैदा होने से सदियों पहले ही उनके अपने परिवार के इतिहास में शुरू हो चुकी थी? क्या उस सल्वेशन, उस छुटकारे की नींव उन्हीं इम्परफेक्ट एंसेस्टर्स के जरिए रखी जा चुकी थी?
ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस टेक्स्ट को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उम्मीद का एक अनंत स्रोत बना देता है। जो बच्चा कलंकित लोगों की लाइन में आकर उन्हें अपनाता है, वो असल में दुनिया को वही बताना चाह रहा है।
उसी सोच के साथ अपने इतिहास और शायद अपनी खुद की कमियों को एक नए नजरिए से देखने का वक्त है। इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।